नमस्कार, आकाशवाणी समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को वीजा संबंधी सहायता के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का मुख्यालय नष्ट करने की पुष्टि की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों का खात्मा करने का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। और भारत ने कोलकाता में वेस्टइंडीज को हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू से फोन पर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के पक्ष में है। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बातचीत की। उन्होंने अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में अमीरात के साथ है। उन्होंने अमीरात में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे ऐसे सभी विदेशी नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है जो अपना वीजा बढ़ाना चाहते हैं या अपने ठहराव को नियमित करना चाहते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे नागरिकों को नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। एक रिपोर्ट।
भारत ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों के लिए अलग से यात्रा और सुरक्षा परामर्श भी जारी किया है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने, गैर जरूरी यात्रा से बचने, निर्धारित आश्रय स्थलों के पास रहने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है। वहीं ईरान में भारतीय नागरिकों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन सहित खाड़ी देशों में राजनयिक मिशनों ने भी भारतीयों से सतर्क रहने और दूतावासों में पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और कुवैत के विदेश मंत्रियों के साथ क्षेत्र में स्थिरता को लेकर भारत की चिंताओं को व्यक्त करते हुए मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम को देखते हुए हर संभव सहायता की प्रतिबद्धता दोहराई है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के मद्देनजर मंत्रालय का यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष हवाई यात्रियों की शिकायतों और प्रश्नों का समाधान कर रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब तक 411 यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और एयर सेवा पोर्टल तथा हेल्पलाइन के माध्यम से यात्रियों को सहायता प्रदान की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर का मुख्यालय नष्ट करने की पुष्टि की है। उन्होंने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों का खात्मा करने का भी दावा किया।
श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के बाकी नौसैनिक जहाजों को भी जल्द ही नष्ट कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के नौसैनिक मुख्यालय को भी काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। उधर इसराइल की सेना ने ईरान के दर्जनों सैन्य कमान केंद्रों पर हमले किए हैं। इनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, खुफिया मुख्यालय, वायुसेना कमान सेंटर और आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय शामिल हैं। इसराइल ने कहा कि इन केंद्रों के नष्ट होने से ईरान की क्षमता को बड़ा झटका लगा है। समाचार कक्ष से मनोज।
वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा की है। तीनों देशों ने एक बयान में अमेरिका के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इन देशों ने कहा है कि वो अमेरिका तथा सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को ब्रिटेन के अड्डे इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है।
अमरीका ने सीमित रक्षात्मक उद्देश्य से ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति मांगी है। हमने इस अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया है ताकि ईरान को पूरे क्षेत्र में मिसाइलें दागने, निर्दोष नागरिकों को मारने, ब्रिटिश नागरिकों की जान जोखिम में डालने और उन देशों पर हमला करने से रोका जा सके जो इसमें शामिल नहीं रहे।
इस बीच ब्रिटेन ने कतर की ओर बढ़ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने तेहरान स्थित अपने दूतावास को बंद करने और वहां से सभी राजनयिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है। ये कदम अमीरात पर ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए उठाया गया है। अमीरात ने ओमान पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। अमीरात ने कहा है कि ये इस क्षेत्र में माहौल को बिगाड़ने का एक खतरनाक प्रयास है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के विरुद्ध अभियान में उसके 3 सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कई सैनिकों को छर्रे लगने से मामूली चोटें आई हैं और वो ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं। इस बीच ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। एशिया में आज सुबह ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स लाइट स्वीट क्रूड तेल की कीमत में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत लगभग 9% बढ़कर $79.3 और नाइमेक्स की कीमत 8.5% बढ़कर $72.70 पर पहुंच गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी में अब तक की प्रगति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी आज भारत कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरम में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जिन्होंने पिछले वर्ष मार्च में पदभार संभाला था, भारत के पहले पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा पर हैं। कनाडा भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। भारत और कनाडा वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों जैसे आतंकवाद रोधी प्रयास, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी संवाद और सहयोग करते हैं। इसके अलावा दोनों देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में भी मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग आपसी विश्वास को दर्शाता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का एक अहम स्तंभ बना हुआ है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मुंबई दौरे के बाद कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने लाडली योजना को लखपति बिटिया योजना के तौर पर नया रूप दिया है।
लाडली योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के नाम पर संस्थागत जन्म होने पर ₹11,000 और घरेलू जन्म होने पर ₹10,000 जमा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त कक्षा 1, 6 और 9वीं में प्रवेश करने पर तथा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने और कक्षा 12 में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ावों पर ₹5,000 की राशि जमा की जाती थी। यह संचित राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु में निकाली जा सकती थी। इसके अलावा दिल्ली लखपति बिटिया योजना पूरी तरह डिजिटल होगी। फंड का प्रबंधन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और निवेश SBI लाइफ धनराशि साधन के अंतर्गत होगा। इसके लिए बालिका का जन्म दिल्ली में होना अनिवार्य है। यह लाभ प्रति परिवार 2 जीवित बालिकाओं तक सीमित रहेगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल कूच बिहार जिले में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने इसे व्यापक भ्रष्टाचार के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को जवाबदेह ठहराने का अभियान बताया। श्री नवीन ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें घर में रहने की सलाह देती है। श्री नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान 50 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं।
50 लाख से अधिक घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट कटा है और ये यहाँ के प्रशासन ने माना है कि आज 50 लाख से अधिक लोग यहाँ पर घुसपैठी बनकर यहाँ के लोगों का हक छीनते थे। ममता दीदी, क्या आपने बंगाल के लोगों को, अपनी सरकार को उन घुसपैठियों पर भरोसा किया? बंगाल की जनता पे अगर भरोसा किया होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
वहीं राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग आज एक उच्च स्तरीय बैठक करेगा। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सुबह 11 बजे से कई सत्रों में वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल होगा। मध्य प्रदेश सरकार आज बड़वानी के जनजातीय क्षेत्र में अपनी पहली कृषि कैबिनेट की बैठक करेगी। ये पहल किसान कल्याण वर्ष में किसानों को बागवानी से बाजार तक के चरणों में सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास के तौर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 17 विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के सूजाबाद डोमरी में कल सिर्फ एक घंटे में निवासियों ने 251,446 पौधे लगाकर चीन का 8 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से जज ऋषिनाथ ने मेयर और नगर निगम आयुक्त को प्रमाण पत्र प्रदान किए। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
T20 क्रिकेट विश्व कप के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में कल रात भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में संजू सैमसन की 50 गेंद पर नबाद 97 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 4 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। संजू ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा, वहीं दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगे। वहीं हॉकी में 8 मार्च से शुरू हो रहे विश्व कप क्वालिफायर मुकाबलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम कल हैदराबाद पहुंची। प्रतियोगिता के पूल बी में भारत के साथ स्कॉटलैंड, उरुग्वे और वेल्स की टीमें हैं। भारत का पहला मैच 8 मार्च को उरुग्वे के साथ होगा।
मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य भारत में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने देश भर में 64 होली स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। ये रेलगाड़ियां पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल सहित कई स्टेशनों से चलेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान के महत्व पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
धन्यवाद फरहत। अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी की मौत का समाचार और देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को आज सभी समाचार पत्रों ने जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है, ईरान के इंतकाम से आग और भड़की। खमेनी की मौत पर कई देशों में मातम और प्रदर्शन। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका और इसराइल ने भी बमों की बारिश की। राजस्थान पत्रिका ने दुनिया भर में गुस्सा शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। श्रीनगर, लखनऊ, दिल्ली में शिया मुस्लिमों का प्रदर्शन। दैनिक जागरण के शब्द हैं, पारस्परिक हितों पर टिका रहा खामेनी से भारत का रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर समाचार पत्र ने प्रकाशित की है। होली से पहले बेटियों पर आज होगी सौगातों की भारी बरसात। सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी लखपति बिटिया पिंक कार्ड की शुरुआत, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में नई पहल शुरू करने की खबर दी है। पत्र लिखता है, बच्चों की लत छुड़ाने के लिए शिक्षकों ने छोड़ दिया मोबाइल, सरकारी स्कूल में वॉकी टॉकी से काम, अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। दैनिक ट्रिब्यून ने सहज जीवन से ही सुकून शांति की प्राप्ति शीर्षक से अपना संपादकीय दिया है।
धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को वीजा संबंधी सहायता के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का मुख्यालय नष्ट करने की पुष्टि की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों का खात्मा करने का दावा किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।